नमो महापद्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णे तन्मनामे गौरवस्तुते
और देवी
हमें अपना पुत्र बख्श और हो सकता है कि देवकी के दर्शन मेरा जन्म हुआ, किंतु कोई जन्म जाता नहीं, माता पिता नहीं, लोगों को हमें तो क्या कर दिया, आपने हमें पारा पोता बढ़ा दिया, इसमें आप ही का और हम मैंने तो उनको पहचानता नहीं है, मैंने बचपन से ही आपके पिता के रूप में और उनको मैया के रूप में देखे का रूप में कभी उनको जाने जिन्होंने पाल को करके बढ़ा दिया, आंखों की पुतली की भांति जिन्होंने सबसे रक्षा किया, वही मारे माता पिता बहुत तरह के होते, किंतु यही माता पिता पुत्र थे मैं साथ। अच्छा एक बात तो तुम यहाँ रह जाओ, क्योंकि इनके सौ पुत्र को कौन सी मारा, अब इनको तुम रहे और यदि तुम भी चले जाते हो तो मैं बहुत ही निश्चित पा रहा हूँ बाबू मुझे गाली देने कि बचते हो तो पुत्र को बचे हुए पुत्र को भी लेकर के चलाए, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर कुछ दिन रहना होती है और मैं कृष्ण को लेकर के चला जाता हूँ और कुछ दिन यहाँ आ करके सांत्वना देने के बाद में तुम भी फिर वहाँ पर। बलदेव जी ने कहा कि ये हजार होने पर भी मैं इसको नहीं करता, मैं कभी कृष्ण को छोड़ करके एक सेकंड भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं आप इस कृष्ण को लेकर के चले जाएंगे और मैं यहाँ पर। उस समय में कृष्ण ने कहा कि पिताजी एक बात बतलाऊं मैं कहो, उसने कहा कि देखो बल्कि दाऊ जी तो हमारे लिए आए ही नहीं, और यदि मैं चला गया तो दाऊ जी भी चले जाएंगे, और यदि मैं किसी रह गया कुछ दिन के लिए तो दाऊ जी रह सकते हैं। तो हमारे समय से ये आपके सुहृद हैं, मैं आपके सुहृद की संतोष के लिए कुछ दिन रह जाऊँ और रहने के बाद में इन लोगों की भी संतना हो जाएगी और उसके बाद में आ जाऊंगा, बलदेव जी हमारे साथ में आ जाएंगे और नहीं तो बलदेव जी का मन लग जाएगा तुम्हारे ज्ञान में आपके पास में आ जाऊंगा। इतना चतुर शिक्षा भी मैंने वहां पर किसी शिक्षा में ये बतलाया, कोई भी व्यक्ति जहाँ पर अधिक प्रीति मिलती है वही पर वो रखता है, जहाँ खाने पीने की प्रचुरता ऐश्वर्य और भोग जहाँ पर रहता है वहाँ पर नहीं, जीवन के लिए समस्त चीजों का स्वाच्छंद से जहाँ पर मिलता है वहाँ पर नहीं रहता, बल्कि जहाँ प्रेम भी पाता है वहीं पर वो रहता है, और जहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ पर खूब गरीब बहुत प्रकार की प्रतिविधाएं भी हों कि प्रेम जहाँ पर मिलता है तथा आदि होता होता है, तो यह पर निर्विवादित सत्य है कि जहाँ मथुरा से या द्वारका से ब्रज में कृष्ण के प्रति अधिक है यह एकदम सत्य है। ब्रज के लोग कृष्ण को अधिक प्यारे माता पिता भाई बंधु ग्रंथ सखा पति गोप गोपी गाभी यहाँ सकी पशु पक्षी सभी कृष्ण को प्यार करते हैं, तो इसी स्थिति में कृष्ण मथुरा कैसे रह सके, यदि रहते हैं तो ये प्रेम से चिंता हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि ये कभी नहीं हो सकता जब कृष्ण लौट करते नहीं है। पद्म पुराण और दूसरे पुराणों से लखन और भागवत के कुछ श्लोक जिनका बड़ा गंभीर पालन बहुत गंभीर उन श्लोकों के भीतर के अंतिम स्तंभ में देखने के मालूम होता है ये कृष्ण जरूर से उसको देखा कौन जिनके हर हृदय में अधिक प्रेम है उन्होंने और नहीं तो साधारण लोगों ने नहीं मिलते। एक प्रकोष्ठ में नंद बाबा के साथ में आते हैं और दूसरे प्रकोष्ठ में नहीं है। दो इसमें विचार है, एक विचार नंद बाबा जी जब आ रहे हैं, मैंने कल बतलाया था, स्वाभाविक रूप में रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? कृष्ण के प्रति अत्यंत अधिक प्रीति और ममता है। जब हृदय में, हृदय की तंत्री में थोड़ा सा कुछ भी लग जाता है ना अत्यंत दूर, तो उस मैंने अपने आप बुलाई था। नंद बाबा स्वाभाविक स्थिति से अत्यंत दुखी होकर के रहे। हम लोग एक साथ में हैं, उसमें नहीं मालूम था कि ये सब बच्चे हमारे साथ में हैं, हम लोग एक साथ में। मालूम क्या पड़ता है, यदि किसी को कोई स्नेह करता है, जब साथ में रहता है तो नहीं मालूम होता, जिस समय अलग होने लगता है और मालूम होता है कि अब भेद नहीं होगी, निकट नहीं, हम ही छोड़कर के जा रहा है, उसमें रहने इतनी अनुभूति होती है जिसको वचनों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अभी तुम लोगों में कोई अभी इधर उधर हो जाए ना, उसमें मालूम, और जब वो मिलता है किसी प्रकार से, उसमें कितना आनंद होगा।
और
यदि प्रेम यथार्थ में होना, निस्वार्थ प्रेम हो सकती है, उस समय में इसकी प्रतीति होगी, अनुभूति होती है, अन्यथा ऐसे एक साथ में रहने की अनुभूति नहीं। आज तक नंद बाबा ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि कृष्ण हमें छोड़ देगा, वो अलग हो जाएगा, मैं उसको छोड़ करके एक सेकेंड नहीं रह सकूंगा, ये कभी सोचा ही नहीं। सब समय तो अधिक कभी दो चार करने के लिए कृष्ण चले जाते, इससे अतिरिक्त अवसर नहीं। उसी समय में उनको कितना दुख होता था, और आज जब देख रहे हैं कि ये विदाई आज की ही नहीं है, काम तो नहीं आएगा, रात में आज पहली बार हमको उससे अलग सुना पड़ेगा, और ये मुखरा काम हो गया, उनको विश्वास ही नहीं किस प्रकार से आ रहा, विश्वास नहीं हुआ। इतनी उनके प्रति कृष्ण के प्रति प्रीति है, जिसको उनको भी अनुभूति नहीं दे कितनी हमारी उनके प्रति प्रीति, वो जब अलग होने लगे तब इसकी अनुभूति, इसीलिए बीच बीच में विदाई विरह विरह कभी ना मिलन का जो भाव है वो समझ में नहीं आती, उसी समय उपलब्धि होती है, अन्यथा उपलब्धि नहीं होती। स्वाभाविक रूप में और भी बाहरी रूप में तो ये देख रहे हैं, मैं यशोदा जी को क्या उत्तर दूंगा, अच्छा यशोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रीति है, नंदबाबा का कृष्ण के प्रति प्रीति नहीं है, किंतु यशोदा जी जरा व्यक्त कर देती हैं आंखों के आंसुओं से और चेहरे के उदासी उदासी। नंद बाबा जी बड़े कठिन समुद्र है, वो कभी हम दूसरों को अनुभव नहीं कर देते, किंतु नंद बाबा को कम नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप में रो रहे हैं, किंतु गौमुखी यही दिखला रहे हैं क्या, मैं वहां जाऊंगा तो क्या उत्तर दूंगा, उनको कैसे मुख दिखलाऊंगा, ये प्रश्न तो था नहीं, किंतु ये भी कुछ गौण रूप में है ना, ये जरूर उनको क्या कहूं, क्यों नहीं साथ में लेकर के, उसका उत्तर हमें क्या। अब ये स्मरण करते 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 एक तो करेला की लता स्वयं ही कड़ी हुई है और जिनके ऊपर भी चढ़ गई और बिखर गई, एक तो दुख हृदय पृथ्वी के छोड़ने का, अब दूसरा बात हो गया वहां पर मैं क्या उतरना कैसे चल जाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है जी वहां पर, अब वहां से क्या करूं? उन्होंने सोचा कि शक्ति तो हमको कभी भी अकेला छोड़ नहीं सकता, इसलिए सोचा कि कुछ दिखलाऊं जो मैं जा रहा हूं तो शक्ति भी हमारे साथ नहीं चल देगा, वसुदेव इत्यादि रोक नहीं सकेंगे। उनको पूर्ण विश्वास आ गया था, इसलिए वहां से तो आगे समय चलू वसुदेव देवकी रुद्र से इत्यादि कुछ भी नहीं बोले, ये ठहर जाओ। बल्कि नंद बाबा ने कहा कि जितने दिन तक तुम यहां ठहरते हो उतना दिन ठहर जाओ, पर ये बलिवासी लोग मर जाएंगे हमारे लिए, इसलिए हमको सांत्वना देने के लिए आपको और ये दिल्ली में होता जाना जरूरी है, मैं दो चार दिन ठहरूंगा जो किसी प्रकार से कृष्ण ने वहां पर उनको आभूषण इत्यादि कजेरिया मैया को दे दें। अब तो और दुख का पहाड़ है, इसलिए एक तो ऐसे ही जानी है समाप्त था। अब ये गहना खुशी की बात मैं मैया को कहूंगा, ये तो और भी बड़ा मुश्किल हो गया, इसमें मैं कैसे समझाऊंगा? कृष्ण कहते हैं नहीं, इसको देंगे मैया को, ये कृष्ण ने आपको दिया, मैं भी दो दिन में आता हूं। नंद बाबा सोच रहे हैं ये आएगा नहीं, इसलिए ये दे रहा है, पतन की पुष्टि कर रहा है, साल बहाना कर रहा है। कृष्ण दिया और उनको उत्सव देने का कोई जन जैसा बांध करके पोटली की दिएगा, रख दिया गाड़ी में पैदल चल, जैसे कोई विराट अनुयाद नहीं, कहीं गया और जीवन में सर्वस्व हार गया, जैसे की नकुल कर दे सारा राज्य जो दुर्धन की राजसभा में बैठ करके युवा में हार गए, यहां तक कि अपने को भी हार गए, भाइयों को हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, और उनके सामने ही द्रौपदी का इतना बड़ा भारी अपमान किया गया, और अपमान करने के बाद भी वहां से जब चल रहे हैं तो कैसे चले हुए इसका अनुमान लगाओ, ये अनुमान लगाना बड़ा है। ऐसे सभी क्लान सर्वस्व हारे हुए वहां से चले, बस ये कि यही आशा थी जो हमारे साथ में है, इसलिए वहां से चले। किंतु कृष्ण ज्ञान का कहा बलदेव जी सांत्वना देने के लिए कुछ दूर तक आए, किंतु वो नहीं, बाबा हम आएंगे, किंतु जिसके लिए वो कर रहे हैं वो तो मालूम पड़ता है कितने मृत्यु कितने मंथर के कलेजे जैसे निर्दय और निर्दय भी हैं, क्रूर भी हैं और वंचक भी हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। इतने दुखी देकर के पिताजी रोते हुए जा रहे हैं, चुप चुप चाप नंद बाबा सोच रहे हैं जा रहे, एक पद बढ़ाया तो ऐसा सोच रहे हैं अब और कृष्ण आया और मुझसे निपट गया और बोलेगा जो पिताजी हम भी तुम्हारे साथ रोता जो आएगा, तुमको देखा जैसे चुपचाप फट एक पग चलते हैं और फिर पीछे की तरफ नहीं गए, रो रोती आप चल के चले गए। वसुदेव देव की सोचे चला जाए तो आप खुद निकल जाए, ये तो सोच रहे हैं ये चले जाए बस थोड़े से आंख के ओट मिल हो जाएगा, और नंद बाबा सोच रहे हैं अब आया करते 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 एक एक पैर बढ़ाते हैं, देखिए अब एक एक आशा धूमी होती चली जा रही है, कितना दुख हमको हुआ होगा इसका। अंत में जब हम तक पैदल चल रहे थे क्योंकि जब ही अब कुछ उनका उनकी बैलगाड़ी कुछ और आगे बढ़ी
और कृष्ण अब ओठ में आए उसमें अब चल नहीं सकते, सब लोगों ने मिला मिला करके उठा करके जारी बैठा। रात थी, रात का समय, शाम के समय ये सब वार्तालाप हुआ और रात में जारी नहीं सकता। अब उनको होश नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन पूछा आए नहीं था, वृंदावन में नंदगांव में लोग रात को थी, घर के भीतर में प्रवेश किया। अब घर भी तो ऐसा ही, अब तो चारों तरफ से बंद खाने में तो गाड़ियों से बना हुआ घर चारों तरफ से किया, जाकर के एक बरामदे में जाकर के बस मुख थक लिया और चुपचाप से इधर में पता लगा लोगों को नंद बाबा आ गए। बैल जो है गाड़ी से निकल नहीं रहे और मुख किया किधर, उधर की तरफ में मथुरा की तरफ में उनके आंखों से भी आंखें देख रहे। ब्रज के लोग जसोदा इत्यादि जब सुना नंद बाबा आए हैं तो द्वार तक सब आए, नंद बाबा को देखा है, कृष्ण को भी देखा है, आंखों से आंखें सब प्रश्न कर रही हैं, कोई उत्तर नहीं है। नंद बाबा तो आकर के बरामदे में चुपचाप लेट गए, बच्ची के ऊपर नहीं और कपड़े से बिल्कुल ढकती है, जिसका तो रो रहे हैं चिंता चिंता करके सुरक्षित हो गए हैं कि कोई चीज नहीं। जो सुधा जी को भी साथ नहीं हुआ जो पूछे कि कृष्ण आया और उनको गहना भी दे दें, बेटा जाली करो उनकी दे दें और किसको सुना, उनकी तो देख रही हूँ उसकी थी किसम इसकी। लोग सब आए दरवाजे पर किसने लगे कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, वृद्ध लोग वहां पर कुछ जो नंद बाबा के साथ में गए थे मथुरा लोग, उन लोगों ने इशारे से बस नंद बाबा कहाँ है मुख से नहीं जा, समझ गए कि कुछ गड़बड़ी है। कृष्ण कहाँ, अब इसका उत्तर वो देंगे क्योंकि इशारों से इनको बताया वो नहीं है। समस्त ब्रह्मचर्य में ये खबर पहुंची, समस्त गोपियां हाहाकार करती हुई तथा लिंगी सब उस स्थिति का वर्णन करके पशुओं की दशा दे करके पक्षियों की दशा दे करके बल्कि बाल्टियों की स्थिति दे करके स्वरूप जी उसका वर्णन नहीं करते, वह अनर्वचनीय हो गया। इस प्रकार से परिचित जी का है, अब तो सब दान सब तो निश्चित हो करते थे, नंद बाबा इधर भी निश्चित हो गए, ब्रजवासी भी अब एकदम सभी लोगों की ऐसी स्थिति हो गई। परिस्थिति ने कहा वहां पर एवं मन त्यागोत्तर प्रवृत्ति ही माता कृष्ण के विच्छेद में गोपियों की जो कथा हुई उसकी विरह वेदना का वर्णन ये स्वरूप भी नहीं कर सके। करते 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 माता स्वरूप को ही तरह ही सुना कर मुग्ध हो सके पड़े, उस समय स्वर्ग जी की यह दशा देख करके ये जो सुन रहे थे ब्राह्मण कुमार ब्राह्मण गोवर्धन वासी के वो उनको पानी इत्यादि देकर के मुख्यमंत्री के इत्यादि देकर के ये बतावा काम हो रहा है सुंदर बोलो सुन कृष्ण कहाँ है उसी जगह है बोलो नहीं है और उनकी मानो पिछली बातों को ये वर्णन कर रहे हैं, जैसे परीक्षित महाराज जो वर्णन कर रहे हैं सब सुन, सौ दिन हो गया उस बात को ये वर्णन कर रहे हैं अपनी मैया से। ऐसे ही वहां पर वो ये वृंदावन में वर्णन कर रहे हैं उसी कुंज में, और दोनों मुख्य मानो आज ही की घटना जो अभी सुगत हुई है, आज ही की घटना, और ये घटना कब की है बहुत समय। किंतु इसी तरह से भक्त लोग तीन घटनाओं को आज ही मानो घटित हुई है ऐसे अनुभूति करके रोते हैं और विगत होना इन लीलाओं के बाद। ये लीलाएं सब नित्य हैं और सच्चिदानंद में है, इसलिए इनको अब जब उज्जवल के बाद में उठे अब उन लीलाओं का वर्णन करके कुछ चुप्त या संक्षिप्त में वर्णन करके कुछ आगे बढ़ने लग गए। परंतु सब कथा शेष सूत्रता व्यक्रम समझित समाक्रम जपना तो अंत पुनरा। किंतु ब्राह्मण तो जो कथा का जो शेष था उसको पूरी तरह से ध्यान देना चाहते थे। इसके बाद में क्या हुआ इसलिए फिर उन्होंने प्रश्न किया इसके बाद में क्या हुआ। तो ये बड़े चित्त को फिर संजग किया और संजग करके उनको फिर से कुछ कहने लग गए। स्वरूप की बात स्वरूप जी का है तेषांतु शोका धर्म सदा पर इस प्रकार निवर्त मात्र जनात शिक्षा जनित कर रो ब्रजम प्रिय प्रेम भटो किरागत सब जी कर रहे हैं। इधर कृष्ण तो रह गए, इधर ब्रजवासियों की जैसी स्थिति में इसका वर्णन मन अति पीड़ित हुआ, शोक में विरह में सब लोग सप्त हो। इधर में कृष्ण ने कृष्ण कुछ दिन वहां रहे, रहने के बाद में जरासंध भी इत्यादि का वध हुआ। इसके बाद में और सब लोगों का जो शक्ति रूप से शत्रु पक्ष का वध होने के बाद में उनको अपूर्व को वृंदावन में भेज, अपूर्व को वृंदावन भेजा क्यों, कृष्ण वृंदावन आना चाहते हैं किंतु इनको अप्रसन्न भी नहीं करना चाहते। जब वंशियों को अप्रसन्न नहीं करना दुखित नहीं करना चाहते, वो एक ऐसे परिवेश की सृष्टि करने जा रहे हैं, एक स्थिति की सृष्टि करने जा रहे हैं, ये मैं वृंदावन भी जाऊं और लोग हम पर दोष का आरोप भी न करें जो उनको छोड़ कर इसलिए वो परिवेश कैसा सृष्टि करेंगे। यदि ये जनवंशियों को जादुओं को ये पता लगे कि हमारे जीवन में ब्रज में क्या स्थिति हो रही है, हमारे बिना वो सब मरेंगे और मर रहे हैं और फिर दिन को बाद में सब ब्रज सुना हो जाएगा और मेरे बिना गए वहां उनका जीवन की शांति नहीं होगी, यदि किसी प्रकार से इनको समझा सकें तो मेरे लिए जाना थोड़ा सा सुगम हो, अन्यथा ये जान नहीं है कि चीज में आपत्तियां खड़ी हो और रोने लग जाए और इसलिए सबसे सबसे पहले जगत को और जादू को ये दिखलाना चाह रहा कि मैं जाने से होगा नहीं, हमारी बात पर विश्वास लोग नहीं करें, किंतु सर्वमान्य जो भाव है वो ब्रज में जल्दी जाए और वहां का संदेश ले आए कि हमारी बिना गुणा की दशा बड़ी गंभीर है, सब लोग मर रहे हैं, तो इनके बातों पर ये लोग क्यों, एक तो मंत्री है एक तो समस्त जगवंशियों के बड़े प्रिय हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सब गुणों से दूषित हैं, इसलिए ये प्रमाणित व्यक्ति हैं, उनकी बातों पर सब लोग विश्वास करते हैं। इसलिए ये भी किंतु गौ का मुख्य कारण क्या है, कृष्ण मथुरा से मथुरा ही क्यों गए, हमने बार बार उसको भी बताया क्यों गए, जाने का कारण हमने बताया दो, पहला कारण ये कि उनके ब्रज में रहने से ब्रजवासियों को कष्ट होता है, विशेष करके और सबको नहीं गोपियों को, और ब्रज में सबसे अधिक प्रिय है गोपियां, आप इन सब गोपियों में दो चंद्राली और किंकी हैं, और इन दोनों में भी परम प्रिया है, प्राणों के भी प्राण है किमती, मिलन में ही श्रीमती राधिका जी को भावी गृह के लिए बहुत ही दूर होता है, हम लोगों के लिए चिंता करना भी बड़ा कठिन है, असंभव है, जिसके हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम होगा वो लोग किसी को समझ सकते हैं, अपराधिक प्रेम यदि हो वो समझ सकते हैं, तो हमारे लिए मिलन में भी इसी को कहते हैं प्रेम वैशिष्ट्य, मिलन में जीरा हमने उस कथा को भी दो एक बात हमें बतलाया है, भ्रमर इत्यादि का उदाहरण देकर के जो भ्रमर दंड आ गया राधा जी के चरणों में और उसको वो डर जाती है और मधुमंगल एक लड़किया लेकर के उसको बहुत दूर खदे आता है और लौट करके कहता है कि मधुसूदन को मैंने बहुत दूर भगा दिया, वो कभी लौटेगा नहीं, ऊपरी अर्थ तो मधुसूदन मैंने भ्रमर को हमने भगा दिया, भीतरी अर्थ राजा जी ने ग्रहण कर लिया मधुसूदन को भगा दिया, ये सुनने मात्र से ही अब तृप्त कभी नहीं लौटी और वो पापी ही है, राजा जी को गलगनियां देकर के खड़े और वो एकदम मुक्त हो जाती है, कृष्ण देकर के देखा और ऐसे ही कितनी बार देखा, ललित माधव चाली ने इसका जैसा वर्णन दिया गया, मिलने में भी हर जिला के वजह से बड़ी खुशी हो जाती है, ये प्रेम जिसको है वो लोग इसकी अनुभूति कर सकते, तो कृष्ण ने सोचा कि इन लोगों को हम दुख देते हैं आज सब समय ऐसा ही व्यक्ति है और जब मैं नहीं रहता हूं किसी कार्य से तो उनको बहुत ही आनंद होता है, कैसे आनंद होता है तो उसमें विरल भी विरल की खुशी होती है, देखा आंख हमारी गणपति जी ने कर दी, श्रीमती जी ने कहा क्या आंख किसी ने बंद नहीं किया, ऐसे बैठी हुई सोच रही हैं खुशी हुई, कृष्ण ने आकर के आंख बंद कर दिया हमारा और वो कहते हैं जान हाथ पकड़ लिया, कृष्ण मानो खिला करके सामने आ गए, ये भी हंसने लगी मानो बातचीत कर रही है, खा पी रही है, श्रृंगार कर रही है, सब कुछ कर रही है, कृष्ण मथुरा गए हैं इसका भान नहीं ले रहा, सोचे हमें तो इस समय इसको इसलिए खुशी आती है और मिलन में दिलों की स्थिति आती है, इसलिए हमारे इनों के साथ में रहना उचित नहीं है, नहीं तो हमारे इनको दुख नहीं, ये प्रधान कार्य गोपियों को सुख देना कृष्ण का उद्देश्य है और कृष्ण का उद्देश्य है गोपियों को सुख देना और गोपियों का उद्देश्य है कृष्ण को सुख देना, इसलिए वो चल गया ऊपर से ये सब कारण ऐसे भी करते हैं, तो इसलिए कृष्ण वहां रह गए मथुरा में और उद्धव इत्यादि के द्वारा, उद्धव ही नहीं जब उद्धव गए और वहां से लौट आए और उनका संदेश दिया तभी इनको जाना चाहिए था, उद्धव प्रतिज्ञा करके आए थे कि हम कृष्ण को लेकर के आए, किंतु नहीं तो बहुत रूढ़ी में ज्ञान ने कहा भी ये सब का वर्णन पहले आया है। बलदेव जी ने भी समझाया सब कुछ मानी नहीं और अंत में बलदेव प्रभु जी चले बलदेव जी गए और देख करके आए। अब उद्धव जी से भी प्रमाणिक व्यक्ति हैं बलदेव, इसलिए बलदेव की बात पर सभी लोग विश्वास करेंगे और कहेंगे जिसे कृष्ण का जाना चाहिए। इसलिए यहां पर श्लोक में ये संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं तेषां तु शोकादिभवं कदापितं प्रकारेण निवर्तमाप्तः जनाः सर्वे ख्यात जनेषु सर्वतो व्रजं क्रिया प्रेम पतो किदार्थतः। बंसों के यहाँ प्रचार कर रहा है कि ब्रजवासी लोग शोक में इतने आते हैं कि जब तक मैं वहां पर नहीं जाऊंगा तब तक वो लोग इसलिए हमको वहां पर जाना है। फिर से जब आगे चले जाते हैं तो ये लोग भी सुख अभिभूत होकर मानने लगेंगे और यदि ये समझे कि उनकी स्थिति बहुत भयानक है तब तो हमको नहीं होगा। इसलिए कहते निजन इसलिए हमको वहां पर स्वयं जाना चाहिए। इस चीज को किसी प्रकार से प्रतिपादित उनको करना है कि मैं खुद ही मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए दुदर्श चुना मैंने शत्रु प्रेम रसी कृष्ण उद्धव जी को और अंत में बलदेव जी को हमारे और उनके द्वारा गोपियों के शोक का और विरह का चित्र करके जगत के सभी लोगों को भावक का वर्णन किया गया। अंत में कृष्ण ब्रजवासियों को फिर मथुरा में थे और उसके बाद में ब्रज में आए। एक लाइन में उन्होंने वर्णन कर दिया कैसे आए इसका दुबार संतु इत्यादि ग्रंथों में और सनातन गोस्वामी भी पीछे इधर उधर में कुछ वर्णन किया वर्णन किया। ब्रज में और चाहे भागवत में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है स्पष्ट रूप से पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से ऐसा वर्णन मिलता है कि कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल का ये संगीत है दंत भक्त
दो भाई
मैंने मौ फेरे भाई और ये अवतार किन के थे जय विजय और उसके बाद में हिरण्यकश्यप कृष्णा बड़े बलवान थे रावण और कुंभ करने के लिए। तो उस समय जब वहां पर हस्तिनापुर में हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में जब यज्ञ हुआ राजकीय यज्ञ और शिशुपाल का जिस समय बदल हुआ तो उसमें इसका उल्लेख नहीं देखते हैं दो आदमियों का उल्लेख नहीं है। एक पौंड्रिक वासुदेव और एक दंतवक्त का भी बदका कोई उल्लेख वहां पर पंडु वासुदेव जो साक्षिकाल वासुदेव जिसको उस समय ठीक ही आराधना में लगा हुआ और ये भी दंत वक्र भी दंत वक्र के बुद्धि भी बड़ी टेढ़ी थी कृष्ण के प्रति टेढ़ी बुद्धि उसकी थी इसलिए दंत वक्र और ऐसा स्वरूप से तो था ही और बुद्धि भी उसकी इसी प्रकार से कृष्ण के प्रति श्री कृष्ण बड़ी उसकी टेढ़ी थी। उस समय श्री जी की आराधना कर रहा था
दोनों
आराधना कर रहे ये दोनों बच गए थे जरासंध का वध हो चुका था तो इसलिए वो उसमें नहीं आ सके। जब वो सुना कि शिशुपाल का वध हो गया शिशुपाल को तो मार जाना और मैं नहीं था मैं जो जगह था तो देख लेता और उधर मैं पौंडित वासुदेव ही सोच रहा था जैसे मैं नहीं था और उसको मार दिया। दोनों बदला लेने की नियत से परस्पर विचार करके थोड़ी से समय के अंतराल से दोनों नहीं आक्रमण किया, कॉन्ट्रिक बध का तो बध हुआ वासुदेव का, बाकी नरेश के साथ में उनका बध कर। यह है करुष देव। करुष देव कहां पर है? द्वारका के कहीं समीप में करुष देव। किसने आक्रमण किया यहां पर मथुरा में? दंत वक्र ने, कृष्ण राजधानी के साथ में, सेनाओं के साथ में वहां पर है द्वारका में। और करुष देश का निवासी कहां वहां पर आक्रमण करता है? ये मथुरा में आक्रमण करने की इच्छा है। मथुरा तो उसमें समस्त जदुवंशी लोग चले गए हैं, तो यहां पर किस पर आक्रमण करेगा? इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उसको इस विषय का अब तक पता लग गया है, इसके माता पिता कौन है। माता पिता भले ही कह रहे हैं जिसे वो है वसुदेव देव, किंतु असल में इसका ब्रज में भी जन्म हुआ है, दोनों से संबंध है, दोनों भाई भाई लगते हैं, एक ही पिता से ही इनका वंश दोनों का है, दोनों छोटे बड़े भाई के रूप में है वसुदेव और नंदेव। इसलिए वो अपने भले ही इनका पुत्र हो देवी वसुदेव का, किंतु माता पिता और परिजन स्वजन आत्मी बंधु बांधव मानता है ब्रजवासी, इसलिए ब्रजवासियों को ही खत्म कर। यहाँ पर तो कोई उनकी रक्षा करने वाला है नहीं, वहां पर चढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि पहले इनको मारे और उनके शोक में अपने आप मरेगा, उसमें इसको मारना सहज हो जाए। इस भावना से लेकर के उसने आक्रमण गतिहा नाम का स्थान है, ये मथुरा का द्वार कहलाता है। वहां तक अपनी सेनाओं को लेकर के आया, वहीं पर सेनाओं को रोक दिया। वो इनकी रक्षा करने के लिए जरूर आएगा, ये भी उसको विश्वास है। पैदल ही चलना आता है, बस पैदल वहां पर, और आकर के वहां पर आक्रमण करने वाला था गोकुल नंदगांव बरसाना इत्यादि पर। सबको मटिया में कर दूंगा, कृष्ण को पता लगा और क्षण मात्र में ही कोई सेना की आवश्यकता नहीं, बिना सेना के ही पैदल जिस प्रकार से यहां से समस्त जदवंशियों को लेकर के द्वारका में गए थे, ऐसे ही क्षण मात्र में उनके लिए आना जाना अत्यंत सहज है। मन की गति से उनका रथ चला और यहां पर वक्र भी का भी आना कोई कठिन नहीं है, कितने बड़े बड़े लंबे देह और मन की गति से इतनी योग विद्याओं को जानने वाला, उसके लिए भी कोई याद नहीं। इसलिए झट यहां पर दोनों ने युद्ध हुआ और युद्ध में उसका संहार करने के बाद में ऐसा वर्णन मिलता है कि कृष्ण गोकुल में या नंद गांव बरसाना इत्यादि में गए और बहुत दिनों तक उनके साथ रहे और रह करके सब जितने गोकुलवासी थे सब लोगों को साथ लेकर के नंद बाबा जसोदा इत्यादि अपने सखा गाभी गो भक्त सब कुछ को लेकर के और रामचंद्र जी की भांति वो लोग वृंदावन में प्रवेश करे। और उनका वह अंश जो वासुदेव था वो प्रकाश प्रकट प्रकाश में वहां से फिर पीछे से द्वारका जा करके उनके साथ में कुछ दिन जा करके उनके साथ भी फिर वो द्वारका लीला को सुना, ऐसा वर्णन मिलता है। अब वो जब तक रहे तब तक वहां पर जितनी भी लीलाएं थी जीव गोस्वामी के अनुसार में गोपियों की अभी तक जो शादी हुई थी वो उनको इस प्रकार से भान अभिमान था कि हमारे जो विवाहिक अनुष्ठानिक हुआ ये पति हमारे हैं, किंतु उनसे पहले ही चंद नहीं। जब कृष्ण दूसरी बार जब आए तो जोग माया और भूमिका जी इस विषय को प्रकट किया। अरे शादी तो हुई ही नहीं, ये विवाह कैसे हो गया? विवाह नहीं है, फिर पति के प्रति ये हमारे पति हैं, ये अभिमान भी मिथ्या है। उसको उन्होंने प्रत्यक्ष दिखलाया, जैसे कि कात्यायनी की पूजा करने वाली गोपियां ये सब कन्या थी, ऐसे राधिका चंद्रावली प्रभृति ललिता विशाखा सभी कन्या है, अभी किसी के साथ में शादी। अब वृषभानंद महाराज और दूसरे गोप लोग नंद बाबा के पास में आते और आकर के निवेदन किया कि हमारी कन्याओं को तुम शादी ही नहीं, अब हम अपनी कन्याओं की शादी कृष्ण के साथ में हम करना चाहते हैं, आप इसको स्वीकार। नंद बाबा यशोदा जी बड़े प्रसन्न हुए और अब सब उनकी शादी वहां पर उन्होंने कराया है। हाँ, यहाँ वृंदावन में वृंदावन और सब का मिलन हुआ है, ऐसा जी गोस्वामी ने गोपाल चंदू ने ऐसा दिखाने की उन्होंने प्रमाण के सहित ऐसा किया है, किंतु उन्होंने इन सबको किया किस लिए